તારીખ 17/7/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 294 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 369.
से मुक्त होवे तो बंधन छूटने से तो मुक्त होता है। आत्मा को संसार में जो बंधन है वो छूट जाने से उसका मोक्ष होता है। संसार में बंधन मूल में कैसा है तो राग बंधन है और द्वेष बंधन है। इन बंधन में मूल में तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, क्या बंध का ज्ञान करने से बंध छूटता है, बंध का विचार करने से बंध छूटता है, ऐसा नहीं है। बंध को भिन्न करने से बंध छूटता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कैसे भिन्न करना, ये बात है। उत्तर रूप है उसका प्रश्न उठाया है कि किस प्रश्न का उत्तर मिले। आत्मा और बंध किसके द्वारा विधा में जुदा करने में आता है, कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न ऐसा पूछने पर अब इसका उत्तर कहते हैं। ऐसा पूछने से उत्तर कहते हैं। टीकाकार आचार्य महाराज का प्रश्न उठाने में एक अभिप्राय है, और अभिप्राय इस प्रकार का है कि अगर जीव को प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न के काल में उसकी जिज्ञासा है। प्रश्न के काल में उसकी जिज्ञासा है, और जिज्ञासा में जो खड़ा है उस वक्त तो उसके विचार की भूमिका में क्या सत्य है, इसको स्थान पाने का अवकाश होता है, खाली जगह होती है। तो ज्ञान प्राप्ति की सबसे अच्छी परिस्थिति कौन सी, इस प्रश्न पर विचार आ जाए तो इस प्रश्न का विचार किया जाए तो ज्ञान प्राप्ति की सही परिस्थिति यह है तो उसको जिज्ञासा हो गया। जिज्ञासा काल ये ज्ञान प्राप्ति का काल है। जिज्ञासा काल जिज्ञासा का काल ये ज्ञान प्राप्ति का काल। गुरुदेव का वचनाम है इसमें परमाधिकार में कि मनुष्य जीव को अपने विकार की भूमिका में सत्य के लिए अवकाश रखना चाहिए। सत्य क्या है, कैसा है, इसका स्वीकार करने के लिए खाली जगह होनी चाहिए, अवकाश होना चाहिए। तो प्रश्न अमृत 1007 है, समागम सार का 1007 नंबर का ये रचनामृत है कि जिज्ञासु जीव को यहाँ जिज्ञासु शब्द लिया है, तो जिज्ञासा है ऐसे जीव को सत्य का स्वीकार होने के हेतु अंतर विचार के स्थान में, हाँ हृदय के विचार के स्थान में, अंतर विचार के स्थान में सत्य को समझने का अवकाश खाली जगह, अवकाश मैंने खाली जगह अवश्य रखना चाहिए, जब भी उनको सत्य मिल सकता है या सत्य जो मिले उसको स्थान प्राप्त होता है। खाली जगह नहीं हुए तो उसको स्थान मिलेगा। तो शास्त्रों में प्रश्न उठाते हैं, शास्त्रकार खुद प्रश्न उठाते हैं, व्याख्यान करने वाला भी खुद प्रश्न उठाता है। इसका यही कारण है कि इस स्थान पर ऐसी जिज्ञासा की अपेक्षा है, और कितने ज्ञानियों की तो शैली ऐसी होती है, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनकी पद्धति ऐसी है शास्त्र लिखने की, टोडरमल जी वहां पर तो प्रश्न उठाते हैं खुद उत्तर देते हैं, प्रश्न उठाते जाते हैं उत्तर देते जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ ऐसा प्रश्न ऐसी जिज्ञासा अपेक्षित है, और ऐसी जिज्ञासा होने से ही उत्तर जो मिलेगा वो बिल्कुल स्थान प्राप्त हो जाएगा, सीखने वाली बात पक्की हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ किस तरह आत्मा और बंध को जुदा कर सकते हैं, ऐसे जिज्ञासा से पूछा हुआ प्रश्न का एक गाथा रूप उत्तर रूप गाथा है। जीवो बंधो ये कहा छिद्यंती स लखणे ही ये ही पन्ना छेदन ये पूछिन्ना नानत्तम मावन्ना जीव बंद बंदे नियत निज निज बंध नियत मेरे खास प्रकार के ऐसे कुछ को नियत कहते हैं, खास उसके लक्षण है, अपने स्व लक्षणों से अपने लक्षणों से छेदने में आता है, यानी भिन्न भिन्न करने में आता है। ऐसे किससे प्रज्ञा रूपी श्रेणी द्वारा छेदने में मैंने भिन्न करने में आने से वे नानापना में भिन्न भिन्नपणा को प्राप्त होता है, अर्थात जुदा पड़ जाता है। ये गाथा का शब्दार्थ है, शुक्राचार्य महाराज की क्या कहा शब्दार्थ में कि जीव का लक्षण कोई ऐसा है जिससे जीव जुदा जानने में आता है, बंध का लक्षण कोई ऐसा है कि जिससे बंध जीव से जुदा जानने में आवे। अपना अपना दोनों को लक्षण है, और जो ज्ञान सूक्ष्म होकर के अंतर्मुख होता है वो दोनों को दिन भिन्न अर्थात जुदा पार देता है, जुदा है उसको जुदा जान लेता है, जुदा जुदा विषय करता है, एक रूप विषय नहीं करता, उतना शब्द को शब्दों का अर्थ है। आचार्य महाराज का में विस्तार करके उसको समझाते हैं। आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा है उसका करण मैंने साधन संबंधित साधन के विषय में मीमांसा करने में आवे, मीमांसा मैंने गहरी विचारना विचार करने में आवे, गहराई से विचार करने में आवे, तो निश्चय से मैंने वास्तव में अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक मैंने छेदन को करने का स्वभाव वाला करण है, करण मैंने साधन है। प्रश्न पूरा होता है, पूरा वाक्य क्या कहते हैं कि आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करना, जुदा करना एक कार्य है। क्या वही कार्य है जो कर्तव्य है करने लायक है। कोई भी कार्य हो, अब उसका साइंस कहते हैं कि कोई भी कार्य हो उसमें कार्य का करने वाला चाहिए, जिसको कर्ता कहते हैं। जो भी कार्य है उसमें कार्य को करने वाला होना चाहिए और कार्य करने का साधन की उपलब्धि भी होनी चाहिए। जब ये कार्य होगा, कार्य करने वाले को कार्य करना है और अपने साधन से कार्य करना है, जब ये कार्य की उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं कि आत्मा और बंध को जुदा करने रूप जो कार्य है उसमें करता है तो आत्मा है। कौन ये काम करेगा? आत्मा ये काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा, गुरु नहीं करेगा, शास्त्र नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करेगा, और कोई दूसरा उसमें मदद करेगा वो बात भी कह रही थी, आत्मा करेगा। कार्य करने वाला तो इसमें आत्मा ही है, मैंने स्वयं खुद ही है। हमारे आत्मा में, हमारा आत्मा में से बंध को भिन्न करना हो, बंध को जुदा करना हो, इसलिए बंध से मुक्त होना हो, जुदा करना में मैंने बंध से मुक्त होना हो, तो वो कार्य हमको ही करना है, आत्मा को ही करना है, दुखों को नहीं करना है। एक बात, और उसका साधन के विषय में, कार्य करने के साधन के विषय में गहराई से विचार करने में आवे, गहराई से तलाश करने में आवे, उसकी गहरी समालोचना करने में आवे, तीन अर्थ लिया है उसने, तो क्या समझ में आता है कि वास्तव में अपने से भिन्न साधन का अभाव है, उसमें कोई दूसरा साधन भी जुटाने की जरूरत नहीं है। कि कोई दूसरा साधन मिल जाए तो हम बंध से मुक्त होवे, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। साधन भी तेरे में है ऐसा कहते हैं, क्या मुक्त तो होना है लेकिन क्या करें, मुक्त होने का कोई साधन हमारे पास नहीं है, हमको मुक्त करते नहीं कोई, दूसरा कोई हमको छुड़ाते नहीं बंधन से, और बंधन से छुड़ाने का कोई साधन भी हमें देते नहीं, हमारे पास है नहीं, इसलिए कोई तुम्हें बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं। साधन भी है तेरे में, है तेरे से अभिन्न साधन है, भिन्न साधन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर भिन्न साधन होता मुक्त होने का, आत्मा को मुक्त होने का कोई भिन्न साधन होता तो ये पराधीन हो जाता मुक्ति होने में। भिन्न साधन से क्या होता, पराधीन हो जाता, दूसरा साधन के अधीन हमारी मुक्ति हो जाती, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। वो कितनी सुविधा है कि कहीं भी हमें साधन ढूंढने को जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमें मुक्त होना हो तो सिर्फ राग को जैसे अपने रूप पकड़ते हो कि मैं रागी, वैसे ज्ञान वेदन को अपने रूप पकड़ो, बात खत्म, कोई जरूरत ये बात है, कहीं भी दूसरा साधन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ मिले, पुस्तक मिले, शास्त्र मिले तो मुक्ति होवे, ऐसी बात नहीं। और हम सम्यक शिखर जाएं, यात्रा करें तो हमारी मुक्ति होवे, ऐसा भी नहीं है। आज तक किताब को सब छपा लेते हैं, मेरा जाए थे सोनगढ़ में, करते थे निकाल कर प्यार करते करते सोनगढ़ आए थे दिगंबर मुनि आचार्य गुरुदेव के साथ, थोड़ी बातें चली थी, मैं उपस्थित था। गुरुदेव को बोले मेरे पास एक पुस्तक है बहुत बढ़िया लिखा है उसने कि एक दफे समय शिखर की कोई यात्रा करता है उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्या लिखा है इसमें, अगर कोई मनुष्य समय शिखर की यात्रा एक दफे भी कर लेने तो उसकी मुक्ति हो जाए। गुरुदेव ने बोला कि ये शास्त्र नहीं है, क्या ऐसे कहने वाला पुस्तक शास्त्र नहीं होता, क्यों कि यात्रा का सुग्राग हुआ है, सुग्राग से मुक्ति होगी, शास्त्र में ऐसा होता नहीं। सीधा बोल दिया, कुछ सीधा देखे ही बोल दिया, ये शास्त्र नहीं है, शास्त्र में ऐसी बात नहीं हो सकती कि राग से मुक्ति, राग तो खुद बंद स्वरूप है, बंद करने वाला है, इससे मुक्ति कैसे होगी, तो हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं कि वास्तव में अपने से भिन्न साधन नहीं होने से, अभाव होना मैंने नहीं होने से, अपनी भगवती प्रज्ञा ही, प्रज्ञा शब्द को एक विशेषण और लगा दिया, भगवती प्रज्ञा, भगवत मैंने पवित्र, भगवत का अर्थ क्या होता है, पवित्र, जो ज्ञान मैला नहीं है, क्या प्रज्ञा मैंने बुद्धि मति, जिसकी जो मति जो बुद्धि मैली नहीं है, निर्मल है, तो निर्मल बुद्धि से काम होता है, आत्मा स्वरूप से शुद्ध है, मतलब निर्मल है, पवित्र है, और पवित्र ज्ञान द्वारा, निर्मल ज्ञान द्वारा ही वो ग्रहण होता है, पकड़ में आता है, मैले ज्ञान से वो पकड़ में नहीं आएगा, ये कहने का यहाँ अभिप्राय है। इसलिए कहते हैं कि भगवती प्रज्ञा ही, तो भगवती प्रज्ञा किसको कहे, उसका क्या स्वरूप है, इस बात का तो कोई अर्थ है, भाव है उसमें भरा है, वो कुछ है, क्योंकि तो महान परमागम है, एक एक बात मंत्र रूप है, मंत्र से सिद्धि होती है ना, तो दुख दूर हो जाए, बीमारी हो तो मिट जाए, निर्धनता हो तो श्रीमंत हो जाए, मंत्र से कार्य होता है कि नहीं होता है, ये मंत्र है, सारा संसार का दुख बंधन छूट जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसा मंत्र है, ये है तो मंत्र ही है, लेकिन वो जगत में जो मंत्र कहते हैं ऐसा नहीं है, वो तो आत्मा को संसार में से छुड़ा करके बंधन में से छुड़ा करके उसकी मुक्ति करके सिद्ध पद में ले जाए, निर्वाण पद को प्राप्त करा दें, ऐसे मंत्र हैं। इसलिए जो ज्ञान अंतर्मुख होता है, भगवती प्रज्ञा किसको कहते हैं, जो ज्ञान की पर्याय अंतर्मुख होकर के अपने परम स्वरूप को, परमात्म पद को ग्रहण करता है, उसको भगवती प्रज्ञा कहने में आता है। अंतर्मुखी ज्ञान की पर्याय ये भगवती प्रज्ञा है, वही साथ है। इससे ही भिन्न होता है बंध का, बंध भाव से इससे ही जुदा होने में आता है। भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है, छेदन करने वाला, भिन्न करने वाला साधन है। अपना ज्ञान का पर्याय ही साधन है, दूसरा कोई साधन ये कारक है कि नहीं, करण नाम का कारक हुआ कि नहीं पर्याय। भगवती प्रज्ञा करण, करण छह कारकों में करण साधन, करण साधन कारक है, आया कि नहीं कारक, पर्याय का कारक आया कि नहीं आया। वो प्रज्ञा कारक का विषय आ गया, कर्ता कार्य और करण तीनों एक जगह आ गया। कार्य तो कार्य ही भी एक कारक है, कर्म जिसको कहते हैं, कारक में उसका नाम कर्म है, और करण नाम का भी कारक है। दो कारक को तो ले लिया, इधर मोक्ष अधिकार में ले लिया पर्याय। वो करण है, वह प्रज्ञा द्वारा उनको छेदने में आने से वे भिन्न भिन्न पणा को अवश्य प्राप्त होते हैं। जो भगवती प्रज्ञा द्वारा उनको भिन्न भिन्न करने में आता है, छेदने में आता है, तो वो अवश्य भिन्न होते ही है। भगवती प्रज्ञा से उसको भिन्न करे और वो भिन्न नहीं भी होवे, ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। भिन्न होवे ही होवे, नहीं होवे ऐसा कभी नहीं बने, उसमें भी अपवाद नहीं है, ऐसा सफलता उसमें होवे ही होवे। इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष के मार्ग में कोई भी जीव हो, कहां से भी आया हो, जो सही पुरुषार्थ करता है वो कभी कभी फेल होता नहीं, निष्फल नहीं होता। अनंत जीव ऐसे हुए, अनंत जीव ऐसे होंगे जो सही पुरुषार्थ करेंगे वो एक भी निष्फल हुआ नहीं, न होने वाला भी, गारंटेड, ये कहना गारंटी देते हैं। इधर ये अच्छे अच्छे कंपनी वाले गारंटी देते कि नहीं, 5 ईयर गारंटी, 10 ईयर्स गारंटी आते कि नहीं आपके आते। और अच्छी कंपनी हो तो उसका गारंटी मान लेते लोग, फलानी कंपनी की गारंटी है, मामूली नहीं है, वो टाटा वाला की गारंटी है, ये गोदरेज वाले की गारंटी है, क्वालिटी होती है उसमें। तो ये भगवान की गारंटी है, किसकी है, कुंदकुंद भगवान की, अमृतचंद्र भगवान की, जिनेश्वर भगवान की ये गारंटी है। मैंने सबसे प्रमाणिक है उसकी गारंटी है, अप्रमाणिकों की गारंटी हम मान लेते हैं, प्रमाणिक की गारंटी नहीं मानी, गारंटेड बात है। मिस्त्र भी है, उनको तो माल बेचने वाले को तो मुनाफा करने का स्वार्थ भी है, फिर भी हम इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करके पैसे दे देते हैं, चीज तो फिर घर में आएगी, फिर उसका प्रयोग होगा, जब पता चलेगा कि ये काम करता है कि नहीं, और 5 वर्ष की गारंटी और 5 महीने में फेल हो गए तो 5 महीना जाए बात तो पता चले ने, या 2 साल जाने के बाद पता चले ने, पैसा तो पहले देना पड़ता है। ऐसा थोड़ा कहेंगे कि 5 साल की गारंटी है तो 36 साल पैसा मिलेगा, ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता। मुनाफा करने वाले पर हम विश्वास रखते हैं, तो जिसको थोड़ा भी स्प्रहा नहीं है, थोड़ी भी स्प्रहा नहीं है, क्या बिल्कुल स्प्रहा नहीं है, जो विराग है, निष्प्रह है, उनकी गारंटी को स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? जब तकलीफ नहीं है तो पुरुषार्थ क्यों नहीं चालू करें? बाजार में तो आप व्यापार धंधा करो, मुनाफा मिले भी और कभी नहीं भी मिले, ज्यादा मिले और कभी कम भी मिले, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी यहां इधर नहीं ऐसा है। यहां तो पुरुषार्थ का व्यापार चले और मुनाफा होवे होवे और भगवती प्रज्ञा, भगवती प्रज्ञा तो पर्याय ही है। ज्ञान स्वरूप बुद्धि, बुद्धि मति पर्याय का स्वरूप है। सीधी बात है, चोखी तो बात है, इधर पर्याय का करण हुआ कि नहीं हुआ है? किसका? आत्मा में वो शक्ति रूप साधन है, करण नाम का एक गुण है, वो त्रिकाली है, और इधर जो भगवती प्रज्ञा है वो पर्याय है, वो भी करण है, उसमें एक गुण का रूप साथ में है। हाँ हाँ ठीक है, एक शक्ति रूप है और एक व्यक्ति रूप है, और शक्ति की व्यक्ति तो होती ही है, शक्ति का एक समय भी ऐसा नहीं होता कि जिसकी व्यक्ति नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? पर्याय की स्वतंत्रता है कि नहीं है, सवाल ये है, जो आपने प्रतिपादन किया, जैसा आपने कहा, इसके सामने हमारा एक प्रश्न है कि पर्याय स्वतंत्र है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो वहां बात करता हूं। जैसे कि वस्तु में विकार होने का कोई गुण है क्या? संसार होने का कोई गुण है क्या? और पर्याय में होता है कि नहीं होता है? तो गुण के अधीन अगर पर्याय होती तो, या द्रव्य के अधीन अगर पर्याय होती तो, एक भी जीव को एक समय के लिए भी संसार नहीं रहता या नहीं होता। अनंत काल से जो संसार है यह सूचित करता है कि पर्याय वो द्रव गुण के अधीन नहीं परिणमन रही है, स्वतंत्र परिणमन रही है, परिणमन कर रही है, ऐसी बात है। प्रति समय शिक्षे का अक्षर सत्कार करता है, प्रति समय होता है, एक समय भी खाली नहीं। गुरुदेव तो वहां तक कहते थे कि मोक्ष मार्गी धर्मात्मा की पर्याय में धर्म के शुद्ध पर्याय का छह कारक भिन्न है और विकार के अंश वाला छह कारक भी भिन्न है, इतना सूक्ष्म कहते थे। अब एक पर्याय में बारह। क्या भगवान भाई, में राग है विकार है वो आत्मा की शुद्धि को नहीं करता है? नहीं नहीं नहीं, एक समय में शुद्धि भी है और एक समय में अशुद्धि भी है धर्मात्मा को, एक पर्याय में। हाँ, एक पर्याय में बारह कारक की बात है। ये बात है, ऐसे गुरुदेव ले जाते ऐसे बात होती थी। हाँ, मुश्किल हो जावे बात तो कुछ जैसी है, लेकिन बात क्यों कि जो विकार को करेगा वो अविकार को कैसे करेगा, पवित्रता है वो मलिनता को कैसे प्राप्त होगी और मलिनता वाला पवित्रता को कहां से लाएगा, जो भाव मलिन है वो पवित्रता को कहां से लाएगा और जो भाव पवित्र है वो मलिनता को कहां से लाएगा। वाली पैदा नहीं, न्याय से भी बुद्धि में तो आना चाहिए ना, सीधा समझ में आता है। पर्याय की स्वतंत्रता का स्वीकार नहीं होता तो अनंत पर्यायों का जो पिंड है द्रव, उसकी स्वतंत्रता का स्वीकार कहां से लाएगा? एक पर्याय को स्वतंत्र नहीं स्वीकारेगा, वो अनंत पर्याय की स्वतंत्रता का स्वीकार कहां से लाएगा? नहीं सकता, तो द्रव समझ में आ सकता नहीं, वो तो एक सिद्धांत टूटे सब सिद्धांत टूट जाएगा। एक नहीं टूटता है, सब टूट जाता है। क्यों? आपस में वस्तु का स्वरूप को कहने वाला ये सिद्धांत एक श्रृंखला है, पूरी साकल है। साकल में एक जगह से टूट जाने से पूरी साकल खत्म, इसका कोई मतलब नहीं रहा साकल का, इसको बांधा साकल से और एक मकोड़ा टूट गया, एक अंकोड़ा टूट गया, साकल साकल नहीं रही, इसको बांधा नहीं जाता, फिर टूट गया उसे ऐसा। यहाँ तो एक प्रेरणा मिलती है मुमुक्षु जीव को, उत्साह बढ़ाने के लिए, उमंग बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ जगाने के लिए प्रेरणा मिलती है कि तो पुरुषार्थ कर, निष्फल नहीं होगा। बाजार में जाता है वहां तुझे कोई गारंटी नहीं है, ग्राहक को लाना पड़ता है या ग्राहक आता है, है? लाने से कोई आ जाएगा क्या? उसको लेने की जरूरत होगी तो काम होगा, तो कोई गारंटी है किसको कब जरूरत हो? और हमारे जैसे तो बहुत बैठे हैं, हमारी दुकान पर आ जावे, गारंटी थोड़ी है, इधर तो गारंटी। यह काम करने को निकला, अपना आत्महित करने को निकला, मोक्ष करने के लिए तैयार हुआ, तो आचार्य महाराज गारंटी देते हैं कि बस तेरा काम हो जाएगा, तुम बिल्कुल तसल्ली रखो कि तुम्हारा काम होगा होगा और होगा ही। वही है, इसलिए पराधीन व्यापार नहीं है, हाँ तो पराधीनता है इसलिए सफलता नहीं होगा। लड़का परीक्षा देता है ना इम्तिहान, तो उसमें पास भी होता है और फेल भी होता है कि नहीं होता है? गारंटी है कोई पास होने की? दर्द होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, फिर गारंटी है कोई मिटाने की? कोई गारंटी नहीं। कोर्ट में मुकदमा चलाते हैं, वकील को पैसा देते हैं, कोई जजमेंट की गारंटी है क्या वकील के पास? लेकिन इधर गारंटी है, महान आचार्य की गारंटी है, जिनेश्वर देव की गारंटी है। नया खून आता है, जैसे शरीर में नया खून आने से ताकत बढ़ती है, जैसे नया उत्साह बढ़ता है। ऐसी बात है, मुश्किल हो ही नहीं इस प्रयत्न में, जब तो प्रयत्न करना ही चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? जब निष्फल होते ही नहीं तो प्रयत्न पुरुषार्थ क्यों नहीं करेंगे? करेंगे क्योंकि इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध को विधा में भिन्न भिन्न करना है, अर्थात प्रज्ञा रूपी करण द्वारा ही आत्मा और बंध को जुदा जुदा करने में आता है। यहां पर प्रश्न होता है, आचार्य महाराज फिर प्रश्न उठाते हैं, टीका में प्रश्न उठाते हैं, देखो यहां पर प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध कि जो चेत्य चेतक भाव के कारण उसके भाव चेत्य चेतक भाव होने से चेत्य चेतक भाव रूप होने से अत्यंत निकटता, दोनों की अत्यंत निकटता है और एक जैसा हो रहे हैं, और भेद विज्ञान का अभाव के कारण, भेद विज्ञान नहीं है इसलिए मानो एक दोनों मानो वे एक चेतक ही हो, ऐसा जिसको जिनको जिनका व्यवहार करने में भी आता है, एक जैसा ही जिनके साथ व्यवहार करने में आता है, अर्थात जिनको एक आत्मा तरीके आत्मा जैसे ही व्यवहार में गिनने में आता है, वे प्रज्ञा द्वारा वास्तव में किस प्रकार से किसी विधि से भिन्न कर सकते हैं? क्या प्रश्न उठाया? विधि का प्रश्न उठाया है। कार्य करना है तो कार्य करने की पद्धति तो बताइए, ऐसा कर लो भिन्न कर लो भिन्न पाड़ दो भिन्न कर लो, ऐसा नहीं चले, क्या विधि से भिन्न करें? ये प्रश्न उठाया। प्रश्न लंबा इसीलिए क्या है कि थोड़ी इस विषय में जो कठिनाई है वो प्रश्नकार ने प्रस्तुत की है, रजुआत की है, हमारी तो ये कठिनाई है कि एक आत्मा की एक समय में ज्ञान और राग दो पर्याय साथ में है, इसलिए बहुत निकट है। क्या? बहुत निकट है। और चेत चेतक भाव रूप है, आत्मा चेतक है और चेतक मैंने वेदन करने वाला, अनुभव करने वाला, और वो वेद ज्ञान का अभाव से वो कहता है कि मैं ज्ञान का राग का अनुभव करता हूं। क्या आत्मा क्या कहता है? कि मैं राग का अनुभव करता हूं, ये राग मुझे सुहाता है, सुखदायक है, और वो राग है मुझे दुखदायक, ऐसा वो वेदन करता है राग का, इसलिए उसका उतना निकटपना देख करके व्यवहार भी ऐसा करने में आता है कि जैसे वो दोनों एक ही हो। ये जीव रागी है, या ये जीव कैसा है? संसारी जीव है, रागी जीव है, ऐसा कहते हैं। जीव को संसार में ज्ञानी है ऐसा नहीं व्यवहार करने में आता है, रागी है संसारी है ऐसा व्यवहार करने में आता है। तो दोनों का एकत्व अनुभव में भी होता है और बाहर में ऐसा व्यवहार भी होता है। सिर्फ उतनी बात है, अपनी मुश्किली को रिव्यू करते हैं, हम कहते हैं ना बात, हम तो है अज्ञानी, हम तो रहे अज्ञानी, हम तो आत्मा को जानते नहीं, हमने आत्मा को देखा नहीं। आप कहते हैं कि आत्मा में अनंत सुख भरा है, लेकिन हमको तो सुख का कोई गंध भी आता नहीं है, तो कैसे जाने? ये जो प्रश्न है वैसा ही ये प्रश्न है कि हमको मुक्त होने की विधि बताओ। शिष्य के मुख में क्या प्रश्न रखा है? आत्मा और बंध को भिन्न करना, इसका मतलब क्या? अधिकार तो मोक्ष का है ना, तो मोक्ष होने की कार्य पद्धति तो बताओ साहब, ऐसा कहते हैं। गुरु महाराज को क्या कहते हैं कि महाराज साहब हमको ये मोक्ष होने की कार्य पद्धति को तो बताइए, कार्य तो हमें करना है लेकिन कोई कार्य पद्धति हम नहीं जानते, ये प्रश्न उठाया। इसका समाधान आचार्य देव करते हैं कि आत्मा और बंध का नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतःसंधि में, अंतरंग संधि में प्रज्ञा क्षीणी को सावधान होकर के पटकने से, मारने से उनको छेद सकते हैं या विदा कर सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो बात याद ही किया, ऐसा हम जानते हैं, हमारे अनुभव से जानते हैं। ये बात कोई तर्क लगा कर रख दी है, अनुमान लगा कर रख दी है, ऐसा नहीं है, हमारा अनुभव बोलता है, ऐसा कहते हैं। दो संसार में आता है, दो समुद्र की जाता है। ये मोक्ष मार्ग का प्रणेता हम यहाँ खड़े हैं। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? मोक्ष मार्ग का प्रणेता हम मौजूद अभी खड़े हैं इधर। देखो तुमको मोक्ष क्या है बताते हैं कि हमें कोई बंधन नहीं होता, सर्व क्षेत्र काल का बंधन नहीं रहता, मुनि राज मुक्त हो गए। तो यहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है कि हम जानते हैं। आखिर में क्या बोले? हम जानते हैं, हमारा अनुभव बोलता है, हम अनुभव सिद्ध होकर के ये बात करते हैं, ये अनुभव सिद्ध बात है कि आत्मा और बंध का नियत स्वलक्षणों, हम लक्षण की बात नहीं करेंगे, दोनों को अपना अपना खास लक्षण है जिससे वो भिन्न जाना जाता है या भिन्न पड़ सकते हैं। अगर दोनों का भिन्न लक्षण नहीं होता तो एक बड़ी आपत्ति होती है। जैसे दो जुड़वा भाई और बहन होते हैं ना, तो उतने मिलते जुलते होते हैं कि भूल हो जाए देखने में। फिर तो क्या करना पड़ता है कि हर का एक खास चिन्ह है उसको ध्यान में रखता है, रखना पड़ता है। और बात आमने सामने मुंह देख देख कर मुंह खुला रहता है चेहरा, और वो तो ढका हुआ रहता है कपड़े से, तो चेहरे पर कोई स्पेसिफिक खास चिन्ह है उसको पकड़ना पड़ता है। तो ऐसा जिसको है वो फलाना, ऐसा नहीं है उसको फलाना, तो अलग अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिले तो बहुत बड़ी आपत्ति हो जाती है, तो बहुत बड़ी आपत्ति हो जाती है। उसको भिन्न भिन्न व्यवहार कैसे करें? पहचाने नहीं कि वो है कि वो है, कोई नहीं पहचाने तो उनके साथ व्यवहार कैसा करे? तो ये आपत्ति भी कर रही है। ज्ञान भी आत्मा की पर्याय है और राग भी बंध वाली आत्मा की पर्याय है, फिर भी वहां कोई एक बात नहीं है, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, अपना अपना लक्षण है, जुदा जुदा लक्षण है। और विरुद्ध लक्षण है क्या? दोनों का लक्षण विरुद्ध है। जैसे एक लड़का काला और एक गोला हो, सफेद हो गोरा हो, तो भले चेहरा मिलता जुलता हो लेकिन कोई आपत्ति नहीं है, एक बाप के बेटे होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, तुम्हें कोई मुश्किल ही होने वाली नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसको को सरल करते ना, सुगम कर देते हैं आचार्य महाराज कि तुम्हें कार्य करना है तो ये बात इतनी कठिन नहीं है भैया। क्या ये बात उतनी कठिन नहीं है? तुमने कठिन मान रखी हो तो ये अभिप्राय तुम्हें छोड़ देना है। क्या ऐसा अभिप्राय तुमने छोड़ देना चाहिए? ये कठिन बात नहीं है, सहज सुगमता से होने वाली बात है। कृपा गुरुदेव कहते हैं कि सत है वो सहज है, सुगम है और सर्वत्र इसकी प्राप्ति होती है। समय शिखर जाओ तो सत धर्म मिले ऐसा भी नहीं, और सोनगढ़ जाओ तो मिले ऐसा भी नहीं। तो हमारी बात तो करेंगे, इनको सोनगढ़ वाले बतलाते ना। और महाविदेश जाए क्षेत्र में तो मिले ऐसा भी नहीं है। क्षेत्र का कोई प्रतिबंध नहीं है, सर्वत्र मिलता है, कोई भी जगह हो प्राणी धर्म को मैंने सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। कि अपने अपने स्वलक्षणों की सूक्ष्म बस थोड़ी जो बात है वो इधर है, तो ये सूक्ष्म संधि है आपस में। ज्ञान और राग दोनों पर्याय एक साथ है, दोनों के बीच में कुछ आंध है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, एक जगह से दोनों अलग पड़ता है। ऐसी एक आंध है कि जहां से वो अलग पड़ता है, लेकिन वो जरा सूक्ष्म है। क्या थोड़ी सी कठिनाई हो तो उतनी है कि मिथ्या दृष्टि जीव का उपयोग स्थूल है, उसका ज्ञान स्थूल है और ये संधि सूक्ष्म है, इसलिए उनको थोड़ा कठिन लगता है। वो कहते हैं कि ये बात उनको कठिन लगती है, तो वास्तव में कुछ इसमें दम है। क्या दम है? कि ये विषय सूक्ष्म है और इनका उपयोग स्थूल है, है? स्थूल कर दिया है अपना उपयोग को, स्थूल कर दिया है। कहीं काम में लगाने से क्या नुकसान हुआ है? तो उपयोग हो गया स्थूल। जी हाँ, मोटा हो गया, स्थूल हो गया, विषय सूक्ष्म है। अब क्या करना? ये को सूक्ष्म करो। कैसे करना वो सवाल है। तो कि आत्मकल्याण की भावना को तीव्र करो, आत्मकल्याण की रुचि को तीव्र करो, उपयोग सूक्ष्म हो जाएगा। उपयोग स्थूल हो जाएगा, सावधान भी उपयोग स्थूल है इसलिए है, वरना नुकसान में कौन सावधान रहेगा? तो पर कौन रहेगा? यहां से तो हट जाएगा, नहीं हटता है, इसका मतलब उसको नुकसान नुकसान के रूप में देखने में नहीं आता, वरना तो वहां खड़े रहने वाला है ही नहीं। ये जीव का स्वभाव है कि जहां नुकसान देखे फटता हट जाता है। देखिए यहाँ एक कोयला हो, जलता हुआ कोयला पड़ा हो बगल में, हमें पता नहीं हो कि यहाँ अग्नि पड़ा है क्या, और भूल से हमारा हाथ उस पर लग जाए तो क्या हम विचार करेंगे? किस पर हाथ पड़ा, क्यों पड़ा, किसने रखा, अब हाथ उठाए कि नहीं उठाए, विचार करके उठाए, अभी उठाए, कल उठाए, थोड़ी देर के बाद उठाए, जल्दी से उठाए, ऐसा कोई विचार करने को रुकते हैं? फट सा उठा लेते हैं, इधर तो बहुत देर लगाते हैं। क्या करें, अब करें, बाद में करें, थोड़ा पैसा कमा लेवे, ये कर लेवे, थोड़ा बेटा बेटी का शादी कर लेवे, क्या कर लेवे, कुछ ना कुछ हम विचार करने को लगते हैं, क्योंकि हमें लाभ दिखता नहीं, पर इस विचार में नुकसान है, वो नुकसान भी दिखता नहीं। यहाँ तो लाभ लाभ शांति शांति रूप होता है, तो शांति को नहीं समझते अनुभव में आने पर भी। जब अनुभव में आने वाले अशांति को हम नहीं समझ सकते तो फिर आत्म शांति को कहां से समझेंगे? ये तो स्थूल है, इससे भी हमारा उपयोग हो गया स्थूल। स्थूल अशांति को नहीं समझते और शांति के लालायत नहीं होते तो फिर कठिन ना कठिन लगेगा ये बात, तो फिर कठिन लगेगा, किसी कारण से कठिन लगता है। हाँ, उल्टा पुरुषार्थ और उल्टी रुचि में कठिन लगता है। वेंकर के रचनामृत में बहुत पाते हैं कि सुंदर आई है। कब लगता है? उल्टी रुचि में वो कठिन लगता है। जिसको सही रुचि हो उसको तो कठिन लगता ही नहीं। जो अनुभव प्रकाश ने लिखा, इसलिए वास्तव में कठिन नहीं है फिर भी कठिन लगता है। इसका कारण शुरू से तो कहते हैं कि उपयोग सूक्ष्म करके अंतरंग में संधि को देखकर वहां प्रज्ञा छीनी को सावधान हो करके, ऐसे जैसे कैसे अंधेरे में फायरिंग नहीं है, सावधान हो करके मारने से उसको जुदा हो ही जाता है। कर सकते हैं कि बात हम हमारे अनुभव से करते हैं। अब थोड़ा विस्तार करेंगे कि लक्षण कैसा है, कैसे अनुभव में आता है, कैसे भिन्न होता है, विधि का और भी बात।